ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनाए रखी गई है। मौद्रिक नीति समिति ने विकास पर ध्यान और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद मौद्रिक नीति महंगाई को काबू करने में सफल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति इस समय समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
जिससे सामान्य लोगों को अशिक्षित चिकित्सकों के पास ना जाना पड़े, इस संदर्भ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक महत्वपूर्ण पहल है। पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे। नागपुर में डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण इन परियोजनाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुलडाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और ठाणे में अंबरनाथ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। हरियाणा में भाजपा के लिए ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने बधाई दी। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि एक दशक के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों में से बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बैंकों की स्थिति सीधे तौर पर समग्र अर्थव्यवस्था और घरों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। मुंबई में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को लाभ कमाने के लिए ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बैंकों से उन्नत तकनीक अपनाने और साइबर सुरक्षा के लिए पेशेवरों पर अधिक खर्च करने का आग्रह किया, जो साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या AICTE मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अर्थशास्त्र या वित्त विषय पढ़ाने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्य अल्पकालिक शोध के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य RBI के भीतर विभिन्न परिचालन क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करते हुए संकाय और विद्यार्थियों के बीच RBI की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मैच में दोपहर 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना स्कॉटलैंड से होगा। दोनों ही मैच दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।